माधव, ये नाम कानों में पड़ते ही राधिका के दिल की धड़कनें थम गईं, सांसें अटकने लगीं। लगा जैसे किसी ने उसके आसपास की सारी हवा छीन ली हो। उसके लब फड़फड़ाए, शायद कुछ कहना चाहते थे पर आवाज़ बाहर नहीं निकली। दूसरी तरफ उन लड़कों की भीड़ से एक लड़का आवाज़ सुनकर उनकी ओर पलट गया था और कार्तिक के बुलाने पर उसके पास आ गया था। क्या हुआ, तूने मुझे बुलाया? कोई काम था? माधव का पूरा ध्यान कार्तिक पर था। उसने गलती से भी राधिका की ओर नज़रें नहीं उठाई थीं। माधव का सवाल सुनते ही राधिका उसे कुछ कह पाती, उससे पहले ही कार्तिक ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ तू घर जा रहेगा तो इन्हें छोड़ते हुए जा। अंजलि की दोस्त है और अकेली है, इतनी रात को उनका अकेले जाना ठीक नहीं। अगर तू साथ रहेगा तो हमें चिंता नहीं रहेगी। कार्तिक ने राधिका की ओर इशारा करते हुए अपनी बात पूरी की। राधिका ने उसकी बातें सुनकर पल भर के लिए बेबसी से अपनी आँखें मीच ली। अगले ही पल उसने आँखें खोली और हड़बड़ाते हुए इनकार कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्कूटी से आई हूँ, खुद से चली जाऊँगी घर, अपना ख्याल रख लूँगी, मुझे आप सबको बेवजह परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधिका की बात सुनकर अंजलि ने उसे छिड़क दिया, ज़रूरत कैसे नहीं है, रात के 12 बज रहे हैं और तू अकेली, पता है इतनी रात को तेरा अकेले जाना कितना डेंजरस हो सकता है? तू यहाँ मेरे वजह से आई है, तेरी सेफ्टी का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, जिसे लेकर मैं कोई लापरवाही नहीं कर सकती, इसलिए अब तू कोई बहाना नहीं बनाएगी और मेरी कही हर बात मानेगी। इतना कहकर उसने नज़रें माधव की ओर घुमाते हुए आगे कहा, माधव जी प्लीज़ आप इसे सही सलामत इसके घर तक पहुंचा देना, ये अपनी स्कूटी से आई है तो उसी से चली जाएगी, पर आप इसके पीछे ही रहना और देखना कि इसे कोई परेशानी ना हो। अंजलि के अनुरोध को माधव ने सहजता से स्वीकार कर लिया। वहीं उसकी बात सुनकर राधिका के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए, जिसे कार्तिक ने नोटिस कर लिया। राधिका जी घबराइए नहीं, माधव बहुत शरीफ लड़का है, सालों से जानता हूँ मैं उसे, आप उसके साथ सेफ रहेंगी। कार्तिक की इस बात के बाद राधिका चाहकर भी कुछ कह ना सकी। उसने अंजलि को गले लगाते हुए एक बार फिर उसे विश किया, फिर एक नज़र माधव को देखते हुए आगे बढ़ गई। माधव भी कार्तिक को बाय बोलते हुए उसके पीछे चल दिया। अपनी स्कूटी पर बैठते हुए राधिका ने गहरी सांस छोड़ी। इतने में एक बाइक उसके बगल में आकर रुकी। राधिका ने हेलमेट पहना और स्कूटी स्टार्ट कर दी। उसके पीछे ही वो बाइक भी चल दी। सारे रास्ते उसे अजीब सा महसूस होता रहा, पर खुद को संभाले उसने अपना सारा ध्यान रास्तों पर लगाए रखा। रात का वक्त था इसलिए सड़कें लगभग खाली थी। राधिका ने घर के बाहर स्कूटी रोकी और हेलमेट उतारने के बाद गहरी सांस छोड़ते हुए पीछे पलटी, तो घर के बाहर गलियारे की दूसरी तरफ वो बाइक खड़ी नजर आई। चेहरे पर गंभीर भाव लिए राधिका उसकी ओर बढ़ गई। थैंक्स एंड सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। इट्स ओके, माधव ने सहजता से जवाब दिया और हेलमेट का शीशा लगाते हुए बाइक घुमा ली। राधिका वहीं खड़ी उस बाइक को वहां से जाती देखती रही। जब बाइक उसकी आंखों से ओझल हो गई तो ठंडी आह भरते हुए वापस अपने घर की ओर बढ़ गई। डोरबेल बजाते ही दरवाज़ा खुल गया। नींद में झूमती अप्पू ने दरवाज़ा खोला और वापस सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। नींद की खुमारी उसके सर पर सवार थी। अब तक किसी तरह खुद को फ़ोन में व्यस्त रखे अलसाई हुई सी सोफे पर पड़ी थी, पर अब उसके लिए एक पल भी वहां रुकना मुमकिन नहीं हो सका। नींद जो बर्दाश्त नहीं होती थी, उससे जो एक बार नींद आ गई तो जहां और जिस हाल में होती उसी में सो जाती। राधिका उसे यूं नींद में झूलते देखकर हौले से मुस्कुरा दी और कदम नीचे वाले फ्लोर पर बने कमरे की ओर बढ़ा दिए। आ गई बेटा वापस, कैसी रही शादी, इतनी रात को क्यों आई? आराम से शादी देखकर कल सवेरे आ जाती। कमरे में कदम रखते ही आशुतोष जी की सौम्य सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जिसने उसे एहसास करवाया कि उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, उसके पापा उसके इंतज़ार में ही बैठे थे। राधिका उनके पास आकर बैठ गई। शादी ठीक थी, कुछ देर रुकी मैं वहाँ पर, सारी रात रुकने का कोई औचित्य नहीं था। मैं वहाँ रुककर भला क्या करती, खामखा अनजान लोगों के बीच बोर हो जाती, रात भर जागती तो अगले दिन स्कूल की बेवजह छुट्टी करनी पड़ती, और सबसे बड़ी बात, अगर मैं उस अनजान जगह ठहर जाती तो यहाँ आपको चिंता के मारे रात भर नींद नहीं आती। तो मेरा घर आना ही ठीक था, और अब जब मैं सही सलामत घर आ गई हूँ तो आप भी मेरी चिंता फिक्र छोड़कर आराम से सो जाइए, मैं भी सोने जाती हूँ, सुबह उठना भी है। आशुतोष जी ये देखकर मुस्कुरा उठे कि उनकी बेटी उन्हें कितने अच्छे से जानती है, और सर हिलाते हुए बिस्तर पर लेट गए। राधिका भी अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद कपड़े बदलकर और फ्रेश होने के बाद उसने बुक रैक में रखी एक नॉवल निकाल ली। कोई रोमांटिक नॉवल थी वो, जिसके कवर पर बड़ी ही खूबसूरती से लिखा था, कितनी मोहब्बत है, दो जुदा दिलों की दास्तां, लेखिका थी आर्या। राधिका पल भर उस बुक को देखती रही, फिर उसने जैसे ही उसे खोला एक तस्वीर निकलकर उसके सामने आ गई। ये माधव की तस्वीर थी, पर आज वाले माधव और उस तस्वीर वाले माधव में बहुत अंतर नजर आ रहा था। राधिका कुछ पल भावहीन सी खड़ी सुनी निगाहों से उस तस्वीर को देखती रही, जो देखने में काफी पुरानी सी लग रही थी।
फिर अपने दिल को मजबूत करते हुए उसने उस तस्वीर को टुकड़ों में बांटते हुए डस्टबिन में डाल दिया और खुद बेड पर लेटी सीलिंग को घूरने लगी। आज उसने अपनी जिंदगी की किताब से अतीत के उस पन्ने को फाड़कर फेंक दिया था जिसे वो बिना किसी उम्मीद के सालों से संभालती आई थी, जिसे उसने कभी पढ़ना चाहा था पर पढ़ ना सकी। पर उससे जुड़े अनकहे एहसासों को वो आज भी महसूस करती थी, लेकिन आज उसने सब खत्म कर दिया था। पर क्या वाकई यहाँ सब खत्म हो गया था, या कुछ था जो अब भी बाकी था, कुछ ऐसा जो उन्हें फिर से एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने वाला था? अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा माधव ना चाहते हुए भी आज हुई राधिका से मुलाकात के बारे में सोच रहा था। रह रहकर उसका भावहीन चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। कुछ तो था जो उसके मन को व्याकुल कर रहा था। उसी कमरे में दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिसमें माधव किसी और लड़की के साथ नजर आ रहा था। वो तस्वीर शादी की थी जिसमें माधव दूल्हे के रूप में था और उसके बगल में बैठी लड़की उसकी दुल्हन थी। टू बी कंटिन्यूड।